चलिए देखते हैं इंशाल्लाह ताला। तफसीर आज की, पिछले लेसन से हमने बहुत कुछ सीखा, बहुत सारी बातें। ये हमें पता चला कि औरतों के साथ क्या सलूक होना चाहिए मर्दों का। हमने ये देखा कि एक दूसरे के ऊपर कैसे आपस के अंदर हकूक और फराइज हैं। नेक बीबियां कौन होती हैं, मर्दों की क्या जिम्मेदारी होती है, अल्लाह ताला ने उनको कवाम क्यों बनाया है। फिर हमने ये भी देखा कि अगर झगड़ा हो जाए आपस में तो क्या करना चाहिए। फिर हमने देखा किन किन के साथ हमें एहसान के रवैये रखने हैं। ये आयत बड़ी इंपॉर्टेंट थी और इसके बड़ा आपको सोचने की ज़रूरत है कि इनमें हम किस तरह से एहसान के रवैये के साथ चल रहे हैं इन लोगों के साथ जिनके भी जिक्र आए यहाँ पे। फिर अल्लाह ताला को शेखी खोरे और इस तरह के लोग पसंद नहीं है जो फ़ख्र बड़ा करते हैं, और फिर बुखल अल्लाह ताला को नहीं पसंद है कि कोई बखील हो। और हमने ये भी अंजाम पढ़ा कि जो रियाकारी करता है खर्च करने में या किसी भी चीज़ में, वो किसका साथी है। फिर हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात गुसल और तयम्मुम के हवाले से भी देखी है कि गुसल और तयम्मुम किन हालतों में किया जा सकता है और कैसे करना चाहिए गुसल और तयम्मुम। आज हम भी बहुत अहम मौजूआत को कुछ देखेंगे। शिर्क की बात आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, इसी तरह तस्किया, अपना खुद ही अपने आप को पाक बयान करना, और जिब्त और ताहूत क्या होते हैं इसको देखेंगे, हसद के बारे में बात देखेंगे, अमानतों की बात देखेंगे, अमानत की कितनी पूछ है अल्लाह के यहाँ, और अमानतों को किसको देना चाहिए अमानत, और फिर क्या हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना किसी मुल्क का या किसी जगह का क्या ज़रूरी है या किस सूरत में ज़रूरी है। फिर हम ये भी इंशाल्लाह देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी काम में फैसला कर लें, कर दें किसी चीज़ का, तो फिर हमारे रवैये क्या होने चाहिए। और ईमान के दावे तो बहुत होते हैं, लेकिन ईमान वाकई किसका है ये भी देखेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले आयत नंबर 48 से इंशाल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر بيشك الله تعالى نہیں بخشے گا لا يغفر میں لا پہ اتنا زور اس لیے دے رہی ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اللہ نہیں بخشے گا اللہ تعالیٰ کے تو جب بھی ہم ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کوئی بھی ख्याल तो यही आता है कि अल्लाह ताला तो बड़ा गफूर रहीम है, वो तो बख्शने वाला है। क्या ऐसी बात हो गई कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया अल्लाह नहीं बख्शेगा, नहीं बख्शेगा, किसको नहीं बख्शेगा, किससे अल्लाह इतना नाराज है? क्या काम ऐसा होता है जिसकी अल्लाह ताला के यहाँ बख्शिश नहीं है? आई युशरका बिही, के उसके साथ शिर्क किया जाए, शरीक ठहराया जाए। وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ, और बख्श देगा इसके अलावा कोई भी जो उसको भी वो चाहता होगा, जो भी अमल होगा या जिसके लिए भी वो चाहता होगा, वो बख्शिश का परवाना दे सकता है कि मैंने इसको बख्श दिया। उसको कोई पूछने वाला नहीं है कि अल्लाह तूने इसको क्यों बख्शा। ठीक है, तो बहुत ही ये अहम बात है कि इंसान इस बात को सीरियस ले कि शिर्क क्या चीज है जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमा दे कि अल्लाह नहीं बख्शेगा उसको, वो गफूर रहीम जात नहीं बख्शेगी उसको, जिसने कहा कि मेरे पास पहाड़ों के बराबर और आसमान तक भी तुम्हारे गुनाह आ जाए तब भी मैं उनको बख्श दूंगा, लेकिन उसी हदीस में आता है लेकिन तब के मेरे साथ उसने किसी को शरीक ना किया हो तब मैं उस बंदे को बख्श दूं। तो इससे पता चलता है कि शिर्क इतना कबीर गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह है कि गुनाहों में भी सबसे टॉप पे जो पहला गुनाह आता है वो शिर्क है। तो अब आप खुद अंदाजा करें कि इसको समझना कितना जरूरी है कि हम ये जान लें कि शिर्क क्या होता है। इसी का उलट है तौहीद, तौहीद इसका उलट है। तौहीद को समझेंगे तो शिर्क की समझ आ जाएगी। तौहीद की तीन किस्में हैं, ये आप लिख लें, तीन किस्में हैं तौहीद की। नंबर वन तौहीद रबूबियत, नंबर टू तौहीद अस्माओ सिफात, नंबर थ्री तौहीद उलूहियत। तौहीद रबूबियत क्या होती है कि अल्लाह को रब मानना उसमें उसको एक मानना कि वो मालिक है, वो पालने वाला है, वो मुझे सर्वाइवल देने वाला है, मेरी जात कायम उसके जरिए है, ये सब, और पैदा करने वाला भी वही है, ये सब, ये तौहीद रबूबियत में आता है। तौहीद अस्माउ सिफात में क्या आता है कि अल्लाह ताला ये जो सारे काम करने वाला है, जो भी अफाल हो रहे हैं दुनिया में, वो सारे अल्लाह ताला के हाथ में है, कोई और नहीं करता। तो अस्माउ सिफात जितनी भी अल्लाह की हैं उनको मानना। और तौहीद अलूहियत क्या है? तौहीद अलूहियत असल में ये है तौहीद फिल इबादत। याद रखिए एक बात, हम सोचते हैं ना कि ये जो शिर्क करने वाले हैं ये अल्लाह को नहीं मानते। भाई कुरान आपका कहता है कि जब इनसे पूछा जाता है कि आसमान और जमीन को किसने बनाया, तो कहते हैं अल्लाह ने, तो फिर वो कैसे मुशरिक थे? मुशरिकीन मक्का, उनकी बात की जा रही है। जब वो कहा गया, जब वो बहरी जहाजों में जाते हैं समुद्रों के अंदर और तूफान में उनके जहाज फंस जाते हैं, तो फिर एक अकेले अल्लाह को पुकारते हैं, तो क्या वो अल्लाह को नहीं जानते थे? हज करते थे वो अल्लाह के घर का, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक भी कहते थे। तो क्या बात थी फिर, क्या किस चीज के खिलाफ इस्लाम आया कि ये शिर्क है और ये नहीं करो? यहाँ देखिए, वो अल्लाह को मालिक मानते थे, खालिक मानते थे, उसकी ये मानते थे कि अल्लाह काम कर रहा है सारे, लेकिन कहाँ पे गड़बड़ कहाँ थी? प्रॉब्लम फिर क्या था? प्रॉब्लम ये थी, अल्लाह के वजूद को मानने में प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम ये था कि वो ये कहते थे कि अब इसके बाद ये तो हमने मान लिया, मगर अब इबादत के लायक ये भी हैं, ये जो हमारे जो भी नेक लोग दुनिया से गए हुए, या कोई फरिश्ते हैं या कोई है। और इबादत क्या होती है? इबादत में, इबादत का वैसे माना क्या है? जब हम इबादत का लफ्ज बोलते हैं, असल में यही नहीं समझ है ना, तो इबादत है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं, चाहे अल्लाह का कोई बात माने ही ना, बस मुंह से बोलते रहते हैं इबादत इबादत। लुगत में इबादत का मतलब है अल इतातु बितजल्लुल, इतात तजल्लुल के साथ, मैंने आपको पहले भी ये बात बताई, इंतहाई आजी के साथ अपने आप को जलील करके, हकीर करके, नीचा करके किसी की इबादत कर, किसी की इतात करना, उसका हुक्म मानना, ये होती है इबादत। मोहब्बत के साथ ये होती है इबादत। अब हुक्म चल को माने ना माने, उसको समझ लिया कि हम इबादत ही कर रहे हैं, लेकिन इबादत को करने के कहीं किस किस तरह से आप इसका इजहार करेंगे, ये तो एक बात हो गई ना दिमाग में। आप इजहार कैसे करते हैं? दुआएं, सजदे, नमाजें, कुर्बानियां, मन्नतें, मुरादें, भरोसे, ये सब इस तरीके से आप इबादत को मैनिफेस्ट करते हैं, आप उसका इजहार करते हैं। ठीक है, अल्लाह ताला ने ये रिचुअल्स रखे हैं, ये मरासे में इबादत है। ठीक है, आप क्या होता था, दुआएं उनकी किसी और के सामने, सजदे उनके किसी और के सामने, ये यहाँ पे ही तो शिर्क आ जाता है, यहीं पे तो है कि इबादत में शिर्क करते हैं। याद रखें, दुनिया में कोई मुशरिक ऐसा नहीं है, आप हिंदुओं को भी पूछ लें किसको मानते हैं, वो आपको जितने भी अपने बुत बनाएंगे बताएंगे, उसके बाद क्या कहते हैं, ऊपर वाला तो वो एक ही है। ऊपर वाला किसी को मानते हैं ना, कहते हैं ऊपर वाला वो एक ही है, तो वो ये थोड़ी कहते हैं कोई है ही नहीं। इमरान बिन हुसैन जो जब जिस वक्त मुशरिक थे, इस्लाम लाने से पहले की बात है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि कितने खुदाओं को मानते, बोले 7 को मानता हूं, 6 छोटे हैं तो एक बड़ा है, तो बड़े को तो वो भी मानते थे। इससे पता चलता है हमें जो गलत फहमी है ना वो दूर करें, पहले तो शिर्क को समझे, शिर्क है क्या? तो असल बात है कि शिर्क उलूहियत में करते थे, इबादत में करते थे, इताअत में करते थे, समझ आई? जबकि इस्लाम क्या कहता है, अल्लाह के अलावा किसी के लायक नहीं है, किसी की ये शान नहीं है कि उसकी इबादत की जाए। समझ आ गई बात? तो जैसे सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमाया, वो इबादत करते हैं ऐसों की जो उनको कोई फायदा नहीं देते ना नुकसान देते, फिर इबादत क्या हुई? फिर वो कहते क्या है कि हम अल्लाह के यहाँ इनको सिफारशी करते हैं, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, वो अल्लाह को छोड़ के नहीं इनको मानते थे, वो कहते थे ये हमें अल्लाह ही के करीब करते हैं, हम कौन सा कुछ बुरा कर रहे हैं, असल में तो हमने अल्लाह के करीब ही होना है ना, अब इस जरिए को इस्तेमाल कर ले। ठीक है, तो यानी कानून में, इताअत में, उम्मीदों में, सजदों में, दुआओं में, वहां पे आके किसी और को बना लेते थे। अपना खुदा। और आज देखें, आज उम्मते मुस्लिमा का हाल क्या है। हाल ये है इनका कि आप अपने मुल्कों में देखेंगे जगह जगह पे कब्रें बनाई गई हैं, और फिर उन कब्रों को बाकायदा पूजा जाता है, उनकी इबादत की जाती है। आप कहेंगे इबादत तो नहीं करते, वो इबादत तो अलग ही करते। इबादत क्या कैसे नहीं करते, जबकि वो दुआएं उनसे मांगते हैं, सजदे बाकायदा कब्रों पे किए जाते हैं उनकी तरफ मुंह करके। और फिर उसके बाद कई खड़े होके स्पीकरों पे कहते हैं कि जी देखें जी, क्यों ना हम इनसे मांगे। देखो जी, पानी में जो डूब रहा होता है वो भी तो मदद मांगता है किसी से, तो वो मदद मांगता है, तो हम भी अगर हमारी कोई मुसीबत है तो हम इनको कह रहे हैं, तो ये भी आगे अल्लाह को कह देंगे। तो हम तो इसलिए इनसे कह रहे हैं क्योंकि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कभी नहीं कहा कि ए इब्राहिम अलैहि सलाम, जो अल्लाह के खलील थे, अल्लाह ने उनको अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया, ए इब्राहिम आप हमारी ये बात अल्लाह के सामने कर दें, आप हमारी ये काम हमारा करवा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देखें, 70 सहाबा को जब शहीद कर दिया गया था धोखे के साथ ले जाके, तो उन्होंने क्या दुआ की थी, या अल्लाह हमारे हाल की खबर अपने नबी को दे देना। ये नहीं उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमें यहाँ पे शहीद किया जा रहा है, तो वहीं से कह देते हैं। आज शिर्क कितना हो रहा है कि एक तो नबी अलैहिस्सलाम को समझा जाता है कि हम उनको पुकारें, उनकी कब्रों पे जाके उनको पुकारा जाता है, कब्र पे जाके खड़े होके वहां से उनसे दुआएं मांगी जाती हैं, जबकि सहाबा का तरीका देखें, हमने तो देखना है नहीं कि सहाबा कराम ने क्या इसी तरह किया था। हजरत उमर का जब आता है कि बारिश नहीं हुई थी, बुखारी में हदीस है कि तो क्या फरमाता, हजरत अब्बास को लेकर गए थे बारिश की दुआ करने के लिए, और क्या फरमाते हैं कि या अल्लाह जिस वक्त तेरा नबी जिंदा था तो उस वक्त हम उनको वसीले के तौर पे पेश करते थे बारिश के लिए, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा करते थे ना कि आप दुआ करें बारिश के, आप वो नहीं है हम में तो हम आपके चचा को लेकर आए हैं। क्यों वो जाके कब्र पे क्यों नहीं कह देते थे कि या रसूलल्लाह आप हमारे लिए बारिश की दुआ कर दें अल्लाह से, हम हमारे ऊपर बारिश हो जाए, क्यों नहीं उन्होंने कहा। बहुत सोचे, अल्लाह अकबर। एक आदमी आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा था जो अल्लाह चाहे और जो उसका रसूल चाहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी इतना नापसंद किया था कि फरमाया तुम मुझे अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करते हो, ये कहो कि सिर्फ ये कहो जो अल्लाह चाहे, बस माशा अल्लाह, ठीक है। अब वो सहाबी कह देते मेरी तो नीयत ये थोड़ी थी, मैंने तो असल में तो यही था कि अल्लाह चाहे ना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज बिन जबल को सवारी के पीछे बिठाया हुआ था, तो उनको बहुत सारी नसीहतें की थी, तो आखिर में फरमाया जब तुम सवाल करो तो सिर्फ अल्लाह से करो, जब तुम्हें मदद मांगनी हो तो सिर्फ अल्लाह से मांगना। तो क्या सहाबा को ये मतलब नहीं पता था कि वो कोई डूब रहा हो पानी में तो वो किसी की मदद चाहे, तो हम तो इसलिए ही पुकारते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, या रसूलुल्लाह मदद, या अली मदद, या फलां मदद, या शेख अब्दुल कादिर जीलानी मदद, या गौसे आदम मदद। हम तो किन किन से मददें मांगते हैं, और नमाज में क्या कहते हैं, इया का नस्ताइन, झूठ बोलते हो, इया का नस्ताइन, ए अल्लाह हम सिर्फ तुझसे मदद मांगते हैं, झूठ। कि जब तुम जिंदगी में हमेशा कभी या अली मदद, कभी या रसूल अल्लाह मदद, या मोहम्मद मदद, या फलां मदद, जब तुम जिंदगी में ये कहते तो इया का नस्ताइन क्या क्या इसका मतलब रह गया, क्या ये झूठ नहीं है फिर। हाँ कोई जिंदा है तो आप जरूर उसको कहें, अब क्या हम कह नहीं सकते भाई जाओ बेटे पानी लेकर आओ, तो क्या हम मदद नहीं मांग रहे। हजरत ईसा अलैहि सलाम ने अपने हवारियों से कहा था कि मन अंसारी इलल्लाह, कौन मेरा अल्लाह के यहां मददगार है अल्लाह के कामों में, तो उन्होंने नहीं मदद मांगी थी, मांगी थी और मांग सकते हैं इस तरह, मगर जिंदों से कहा था। गैब में किसी को नहीं पुकारा था उन्होंने, गैब में नहीं पुकारते थे वो नबी अलैहिस्सलाम का, तो सब नबियों को पता था कि एक आखिरी नबी है उनका ये नाम होगा, तो वो गैब से पुकारते रहते। और हमने आज बना लिया कि आदम अलैहिस्सलाम की जो बख्शिश हुई थी ना, वो भी इसी तरह हुई थी। उन्होंने देखा था ऊपर, तो वहां पे लिखा हुआ था मोहम्मद, तो उन्होंने कहा अल्लाह मैं इनके उससे मांगता हूँ। ये कहाँ से घड़ी भी हदीस है, ये कोई हदीस नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद सिखाई हमें, ये नहीं कहा मुझे पुकार लिया करना जिस वक्त मैं चला जाऊंगा। देखो तुम मेरी कब्र पे कह सकते थे ना, हाँ ये जरूर हमें बताया। देखिए याद रखें, कोई बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया, कोई बात ऐसी नहीं है जो तुम्हारी भलाई की हो और मैंने ना तुम्हें बताई हो। कोई बात ऐसी नहीं है जिसके अंदर कोई ऐसी बुराई की बात हो, शर की बात हो, तो तुम्हारे लिए और मैंने ना तुम्हें बताई हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारा दीन पहुंचा दिया, तो क्या नहीं आप बता सकते थे जब मैं दुनिया से चला जाऊं लोगों मेरी कब्र पे आके मुझसे मांग लिया करना। हाँ ये जरूर फरमाया लोगों दरूद पढ़ा करना, अव्वल आखिर दरूद पढ़ा करना, दरूद पढ़ोगे तो दुआएं कबूल होंगी। तो ये भी फरमा देते थे कि मेरी कब्र पे आओगे तो दुआएं कबूल होंगी, क्यों नहीं कहा। और अभी मुझे किसी ने बताया कि वो दरियाए रावी जब पीछे हटाए तो वहां पे एक जनाब कब्र थी नीचे, अल्लाह ताला हमें माफ करे कि हम कैसे लोग हैं, कहते नीचे से कब्र निकल आई, तो वहां पे उन्होंने चादर डाल दी और वहां पे अब वो बैठ गए हैं और वहां पे सारी मन्नतें मुरादें शुरू कर दी। अब खुदा जाने किसकी कब्र, और सबसे पहली बात ये कि पानी के नीचे कब्र रह कैसे गई, कच्ची कब्र तो रह ही नहीं सकती पानी के नीचे, तो इतने अरसे से पानी के नीचे थी। अब वो पानी पीछे हटा तो कब्र एक्सपोज हो गई और बस लोगों को मौका मिल गया, वो वहां पे बैठ गए। पर वो किसी बद की कमर है, किसकी कब्र है, पता नहीं कौन है इसके अंदर, उसको अजाब हो रहा है कि पता भी नहीं है, मगर कब्र मिल गई ना। तो बस हमारा ये हाल आज हो चुका है कि हम कब्रों को पूजने वाले बन गए, ढूंढते हैं कहीं को कब्र मिल जाए, या फिर कहते हैं कि हम बहुत बड़े मुवाहिद हैं, हम तौहीद वाले हैं। अल्लाह ताला ने सूरह नाम में फरमाया कि उन लोगों के बारे में कि वो लोग अल्लदीन आमनु व लम यलबिसू ईमान हम बिजुल्म, वो लोग जो ईमान लाए और उनने अपने ईमान को वो नहीं किया, गड़मट नहीं किया शिर्क के साथ, जुल्म के साथ, मतलब शिर्क के साथ, ये है हिदायत याफ्ता। ईमान इसका मतलब लाने के बाद भी लोग शिर्क की आमेजिश कर देते हैं, शिर्क मिक्स कर देते हैं साथ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ किया करते थे अल्लाहुम्मा इन्नी अउज़ुबिका अन उशरिका बिका शैअन अना आलमु व अस्तगफिरुका माला मालम आलम। तो आप देखें कि शिर्क इतनी कबीर चीज है, यहाँ पे कहा गया शिर्क को अल्लाह नहीं माफ करेगा। जिस चीज में भी पता चल जाए कि ये शिर्क है, उसका शायबा भी हो जाए ना, शक भी हो जाए, तो उससे दूर हो जाए। खालिस तौहीद, ये अल्लाह के यहाँ काबिले कबूल होगी। शिर्क से मिलावट किए हुए ईमान लेकर जाएंगे तो कबूल नहीं होंगे। इसलिए डरना चाहिए इससे कि कहीं हमसे शिर्क का कोई अमल ना हो जाए। तो अल्लाह नहीं बख्शेगा शिर्क को। क्या इसका ये मतलब है कि जिसने कभी शिर्क कर लिया तो अब उसके बाद बस खत्म उसका, नहीं। ये मतलब है जिसने कभी शिर्क किया हो और उस शिर्क में ही करते करते दुनिया से चला गया ना, उसकी नहीं कभी बख्शिश हो सकती। हाँ जो अभी जिंदा है, शिर्क करता था, कभी किया था, आज समझ आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह, फौरन माफी मांग ले दुनिया से जाने से पहले, ठीक है। दूसरी बात क्या यहाँ पे पता चलती है, वयग्फिरु मा दूना दालिक, अल्लाह ताला बख्श देगा जो इसके अलावा है। लिमन यशा को याद रखिएगा, ये नहीं है कि अल्लाह बस इसके साथ जो भी इसके अलावा है वो तो माफ हो ही जाने, अल्लाह ने सबकी गारंटी दे दी है। नहीं, गारंटी तो किसी की भी नहीं है। लिमन यशा, जिसके लिए वो चाहे उसको माफ कर दे, ठीक है। तो इसलिए ये भी ना समझ के बैठ जाए कि बस शिर्क नहीं करेंगे बाकी जो मर्जी करते रहो वो तो माफी ही है, नहीं। वमन युशरिक बिल्लाही फकद इफ्तरा इस्मन अज़ीमा, जो कोई शिर्क करे अल्लाह के साथ तो उसने बड़ा गुनाह, बड़ा अजीम गुनाह उसने घड़ लिया। इसने अब ये अल्लाह ताला ने शिर्क के लिए कोई दलील नहीं उतारी इस दुनिया के अंदर, कोई इसका कोई आप इसको कहते हैं इसकी कोई प्रूफ है कि अल्लाह के साथ कोई है जो किसी चीज में भी, उसकी जात में, उसकी सिफात में, उसके कोई कहीं कोई है, कोई इसकी दलील नहीं है, बेसलेस है ये। तो इसलिए जो शिर्क करता है समझ लो कि उसने बड़ा गुनाह कमा लिया। ये वो गुनाह है कि जो जिसको कहते हैं कि गुनाह कबीरा में भी नंबर वन पे, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं कि आगे कुछ और लोगों की बात आ रही है। वैसे तो ये पीछे से जो बात चल रही है यहूद की चल रही थी और अहले किताब की चल रही थी, मगर सबके लिए ये उन्होंने तो ठीक है किया एक शिर्क, और उनका शिर्क ये था कि उजैर अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया। लेकिन एक बात याद रखे, सारे ज्यूज ने नहीं बनाया, उनमें भी एक एक फिरका है जिसने ये किया, तो फिर सारों को क्यों आ गया शिर्क? इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की बात नहीं मानी। मैंने आपको बताया ना इबादत क्या है, इताअत, इताअत आजी के साथ, इताअत ही नहीं है तो फिर क्या है? फिर किस चीज का बनाना कि हाँ हमने उसको इलाह बना ली, कि ये तो बात तो फिर बेसलेस बात हो गई। कोई औरत कहती है कि ये मेरा शौहर है, अभी शौहर है लेकिन ना उसके कोई हकूक देना, ना उसके साथ रहना, ना कुछ है, तो वो कैसे कह सकती है? वो तो उसको शौहर मानती ही नहीं है, समझ में। तो अल्लाह ताला को जब इंसान कहता है ना वो इलाह है, तो ये बहुत बड़ा कलमा है जो मुंह से निकालते हैं। समझ लें कि आपने कह दिया कि वो इस लायक है कि मैं उसकी इताअत करूं, क्योंकि इबादत के अंदर ही इताअत है ना, ओबीडियंस। लेकिन ओबीडियंस वैसे हमने नहीं करनी, हमसे नहीं अमल होता, ये हम अपनी जिंदगी में कहते हैं। तो हम कि देखो हम कहते क्या हैं और कर क्या रहे हैं, शायद इसलिए हम ये कहते हैं अल्लाह इबादत के लायक है, बस हम उसकी इबादत करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा से बचपन से ये बात सुनी। जब बचपन से सुनी तो बस वही हमारी जुबानों पे, और उसको ही हम समझते हैं कि बस इसको कहने से ही बस सब हमारी निजात हो गई और बस हम मुसलमान हो गए। नहीं, यहूद को ये समझाया जा रहा है, जबकि वो सारे ये अल्लाह का बेटा बनाने वाले नहीं थे, इस बात को समझ लें। मगर उनके काम कैसे थे अब तक, तो आपको समझ आ गई होगी ना कि करते क्या थे वो। अलम तरो इल्लदीना युज़क्कूना अनफुसहुम, अब ये बात हम बहुत दफा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या तुमने उन लोगों को देखा जो खुद को पाक समझते हैं, अपने नफ्सों को, मतलब कि खुद को। अब यहूद में ये बीमारी बहुत ज्यादा थी, वो तो कहते थे बस हम तो पता नहीं क्या बड़ी चीजें, और आज तक भी समझते हैं, कहते हैं आप ज्यू बन नहीं सकते, याद रखें कोई यहूदियत इख्तियार नहीं कर सकता, इसलिए कि वो कहते हैं हम जो माँ की तरफ से यहूदी है ना, बस वही यहूदी है, कोई बाहर से हमारे अंदर नहीं आके मिल सकता। जैसे आज कोई भी मुसलमान बन सकता है, इस्लाम ला सकता है, यहूदियत कोई ला नहीं सकता, वो बस जो है वही है। वो कहते थे हम इतने पाकबाज हैं, अपने बच्चे को लाके दिखाते थे, कहते थे देखें आप बताएं कि इसको इसके ऊपर कोई गुनाह है नहीं, है ना? तो इसी तरह हम भी पाकीज़ा हैं बच्चों की तरह, इतना अपने आप को करते थे। अल्लाह ताला को ये बात नहीं पसंद है। अल्लाह ताला ने फरमाया बलिल्लाहु युज़क्की मन यशा, अल्लाह है जो किसको भी पाक करे। तुम अपनी पाकी के कैसे दावे कर सकते हो? युज़लमूना फतीला, अगर किसी ने कोई नेकी की होगी तो अल्लाह ने उसके साथ जुल्म थोड़ा ही करना। फतील कहते हैं खजूर की गुठली में, आज आप इसको देखिएगा कि खजूर को ले, उसकी गुठली के अंदर जहां कट होता है उसमें एक बार ही एक सा धागा होता है। अरब अरब लोग तो खजूर बहुत खाते थे ना, तो उनको तो वाकफियत थी इससे, तो हमने तो शायद कभी उसे तवज्जो ही ना दी होगी। गुठली को नहीं कोई कुछ समझता तो धागे को क्या समझेगा? इतनी छोटी बारीक चीज भी है ना फतील के बराबर, इतना भी अल्लाह ने जुल्म नहीं करना। तुम ये ना समझो कि अल्लाह को पता नहीं चलेगा तो शायद मैं ही अपनी बातें बताऊं कि मैं कितनी नेक हूं, मैं कितनी पाकीजा हूं। नहीं, अल्लाह जानता है, और वो तुम्हें दे देगा, फिक्र ना करो, यानी तुम्हारा बदला तुम्हें मिल जाएगा। फतील के बराबर भी काम किया होगा ना, उसका भी मिल जाना है, तो तुम फिर इतने परेशान क्यों होते? क्यों अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते? जहां पे हमने देखा कि कोई बैठा है, अब अपनी बड़ाइयां शुरू कर दी, अपनी नेकियां बतानी शुरू कर दी, अपने काम गिनवाने शुरू, मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो वैसे भी करती हूँ, चाहे अपनी आप बोल के कहें, चाहे अपने अमल से कुछ करके दिखाएं, ऐसा कि दूसरा समझ ले कि भाई कितनी नेक है ये। अल्लाह ताला ने सूरह नजम में फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम, तुम अपने नफ्सों को पाकीज़ा करके ना बताओ, वो आलम बिमन इत्तका, अल्लाह को पता है कि कौन है जो जिसमें तकवा है, तुम्हारे बताने से थोड़ी है, अल्लाह को पता है। तो इससे पता चलता है कि हमें खुद अपनी तारीफ करना, अपनी बड़ाइयां बयान करना, अपने खानदान की या अपनी या अपने बच्चों की तारीफें, या अपने अपने पैसे की बातें, या अपनी बैक होम के हम कैसे होते थे, हमारी क्या 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 हमारी बात थी भाई, हम कितनी बड़ी चीज थे, या अपनी नेकी की, ये अल्लाह ताला के यहाँ इतनी कमी है, अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह पाक करता है जिसको चाहता है, वो खुद नहीं पाक हो सकते। अगर कोई अपने आप को समझता है कि मैं नेक हूं, मैं बहुत बड़ी चीज हूं, अल्लाह है कि जिसको मकाम दे। अपने आप को बड़ा बनाने से कोई बड़ा नहीं बनता। और देखिए एक बड़ी प्यारी बात है, मुझे बड़ी पसंद है ये बात कि देखिए अल्लाह ताला ने ना, ये कौन सी सूरह निसा में आगे जाके आप पढ़ेंगे, वरुसुलन कद कससना हुम अलैक मिन कब्लु वरुसुलन लम नकसुस हुम अलैक। ए नबी, कई रसूल ऐसे हैं जिनके बारे में हमने आपको बताया है, और बहुत सारे ऐसे रसूल हैं जिनका हमने जिक्र भी नहीं किया। सुभान अल्लाह, मैं सोचती हूँ देखो कि वो कई रसूल ऐसे हैं जो गुमनाम ही रह गए, उनका नाम भी नहीं किसी को पता, और वो क्या है, कोई आम लोग नहीं है, वो अल्लाह के रसूल हैं लेकिन गुमनाम है, किसी को भी नहीं पता वो कौन थे, कब आए थे, उन्होंने क्या नेकियां की, उन्होंने क्या सबर किए, उनके साथ क्या हुआ, कुछ नहीं पता। तो ऐसे भी तो लोग हैं, उनके अजर अल्लाह के पास महफूज है। ये तो हमें जिन रसूलों का पता बहुत कम है, कुरान में 25 के करीब है, और कितने आए, 1,25,000, और फिर उनका जिक्र भी नहीं है, वो भी तो हैं, और हम क्या है, हम क्या चीजें हैं, और हमारी क्या नेकियां होंगी, लेकिन हम कितनी बड़ाइयां अपनी बयान करते हैं, वो रसूलों के गुमनाम, और हम कोई शय भी नहीं है, और फिर भी देखो हम कितना बोलते हैं, हमारी बातें देखें, मैंने ये काम कर लिया, मैंने तो ऐसे कर लिया, वो कर लिया, कितनी अपनी मदा खुद करते रहते हैं। मदा वो ही होती है जो कोई आपके लिए करे, और वो भी आपकी पीठ पीछे करे तो वो ही अच्छा है। क्योंकि देखिए बुखारी में पहले भी ये बात आ चुकी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफा एक आदमी को दूसरे की तारीफ करते हुए सुन के फरमाया, अफसोस है तेरे ऊपर, तूने अपने साथी की गर्दन तोड़ दी, क्योंकि वो उनके उसके सामने उसकी तारीफ करता रहा था। तो फरमाया अगर तुम में से किसी को ऐसी जरूरत की वजह से किसी की तारीफ करनी ही हो कि तुम ऐसे हो, तो यूं कहे कि फलां शख्स के बारे में मेरी ये राय है, ठीक है, और अल्लाह के नजदीक पसंदीदा अमल यही है कि किसी की तारीफ करनी भी हो तो फिर ऐसे करके कह दिया जाए, या उसके पीठ पीछे उसकी तारीफ कर दी जाए, मगर उसके मुंह पे उसकी तारीफ करना, ये तो ऐसे है कि जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा कहते हैं कि हमें हुक्म दिया कि हम तारीफें करने वालों के मुंह मट्टी से भर दें, क्योंकि वो उसको हलाक कर रहा है ना, वो उसका बेड़ा गर्क कर रहा है। जिस बंदे की तारीफ इतनी होती जाएगी, उसकी अना इतनी बड़ी हो जाएगी, उसके अंदर इतनी हवा भर जाएगी, वो फूल के कुप्पा हो जाएगा कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हो गया, मैं तो पता नहीं क्या बन गया। तो ना अपनी तारीफें खुद अपने मुंह से करनी चाहिए, और ना ही दूसरों के से पसंद करना चाहिए कि वो आपकी खुशामदे करें। हजरत उमर का कौल है कि जो कहे मैं मोमिन हूं वो काफिर है, और जो कहे मैं आलिम हूं वो जाहिल है, और जो कहे मैं जन्नती हूं वो जहन्नमी है। यानी अपने आप को इतना बड़ा से समझ लेना। और कई लोग तो सोचते हैं कि हम तो हर फन मौला है, हमें तो सब पता है, हम तो हर फील्ड के माहिर हैं, अपनी तारीफें खुद ही करे जाएंगे। तो ये एक जगह ये भी आता है कि आपस में एक दूसरे की मदा सताए से परहेज करो, इसलिए कि ये दूसरे पे छुरी फेरना। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि इंसान के पास एक सुबह को अपने दीन में से कुछ भी नहीं होता, यानी एक सुबह वो ऐसी करता है कि उसके दीन में कुछ भी बाकी नहीं बचा होता, कि वो सुबह किसी से अपना काम निकालने के लिए मिला, उसकी तारीफ शुरू कर दी और इसकी मदा सराई शुरू की, और कसमें खा खा के कहने लगा आप तो ऐसे हैं और आप तो ऐसे हैं, हालांकि ना वो उसके नफा का मालिक था ना नुकसान का मालिक था, हालांकि पता नहीं है कि उसके बाद भी पता नहीं है उससे वो इसका काम भी करके देगा या नहीं, लेकिन उसने अपना काम निकलवाना है तो दूसरे के पास जाके ऐसे उसकी तारीफें करता है। तो फिर उन्होंने यही आयत तिलावत फरमाई, वो तो पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा, लेकिन उसने अल्लाह को नाखुश कर दिया। तो अल्लाह है जो जिसको चाहे नेक बना दे, पाक कर दे, तुम अपनी पाकी के चर्चे ना करते फिरो। और फिर फरमा दिया अगर तुम्हारी कोई नेकी होगी भी ना तो फिक्र ना करो, अल्लाह ने दे देना है, कोई कहीं रह नहीं जाएगी। गार के अंदर भी जाके कहीं वो नहीं, हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहा था ना, किसी गार में भी कोई अमल छुपा होगा, जर्रे के बराबर भी कोई होगा, तो अल्लाह उसको भी ले आएगा। तो तुम अपनी नेकियों का समझते हो कि कोई भूल ना जाए अल्लाह, नाउजुबिल्ला, कहीं रह ना जाए मेरा ये अमल, तो मैं बोल बोल के बताऊं। अल्लाह हमें माफ करे इस सब से, अब अपनी तारीफें करने से और अपने गुण गाने से हर वक्त, और अपने आप को बड़ी चीजें समझने से, असल में अंदर ना तकब्बुर होता है जिस वक्त ये चीजें जुबान से निकलती, ऐसे ही नहीं निकलती। कि या तो इंसान को अपनी नेकी परहेजगारी का होता है, या इंसान को अपने किसी और खानदान की बड़ाई का होता है, या अपने माल का कोई तकब्बुर होता है, जब भी ये बातें निकलती हैं, ये ऐसे चलते फिरते नहीं हो जाती। और हम कहते हैं ना, हमें क्या पता हमारे अंदर तकब्बुर है या नहीं, अपनी बातों से देख ले तकब्बुर है कि नहीं है। अगर बातें ऐसी हैं, आप अपनी सारी गुफ्तगू को हम कभी रिकॉर्ड कर लें और उसमें देखा करें कि इसके अंदर हमने क्या क्या कहा है, क्योंकि हमें बातें करके भी तो भूल जाता है कि हमने अपनी कितनी बड़ाइयों की बातें की हैं, और कितना दूसरे पे धाक बिठाने के लिए बाज वो ये शौक होता है कि वो ये बताएं कि हमारे कॉन्टेक्ट कितने बड़े बड़े लोगों के साथ हैं, हमारा मिलना जुलना कितने बड़े लोगों के साथ है। तो हर वक्त इन इसी चीज के पर शेखियां करते रहते। बाजों को ये होता है कि लोगों को कैसे पता चले आप हमारे पास पैसा कितना है, जाहिर है कोई बैंक अकाउंट तो किसी का नहीं जानता, तो आप किस तरह बताएं। तो वो उसके ऊपर इतनी कुछ ना कुछ करके ऐसे बताते रहते हैं। अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए इससे, देख लो पता नहीं क्या इंसान का अंजाम अल्लाह के हाँ हो, और वो दुनिया में अपनी शेखियां ही मारता रह जाए, अपने आप को बड़ा समझता रह जाए, और पता नहीं अल्लाह के हाँ एक जर्रे बराबर भी वैल्यू है या नहीं, या स्कम ऑफ द अर्थ की तरह गंद है, कूड़ा करकट है जमीन का, क्या पता अल्लाह के हाँ क्या है कदरों कीमत। जो हीरे की तरह होते हैं ना, वो तो अपनी बड़ी चीजें छुपा के रखते हैं। मैंने आपको ये वाक्या शायद पहले भी बताया हुआ, मुझे बहुत इंप्रेस करता है ये वाक्या हमेशा। कई लोग कहते हैं मुझे, आप बताएं ना आपके शबो रोज कैसे गुजरते हैं, आपकी एक्टिविटीज क्या हैं, आप कैसे अपना दिन गुजारती हैं, और आप कैसे करते, ये बताने वाली बातें नहीं होती हैं। देखो हम इनसे सीखते हैं, ताबेईन से, कि क्या कैसे वो अब्दुल मलिक जो थे, तो उमर बिन अब्दुल अजीज के 12 बेटे थे, सारे ही बड़े मुत्तकी परहेजगार थे, लेकिन अब्दुल मलिक जो थे ना, वो सब में ही बहुत पाक पाकीजा और बहुत ही नेक इंसान थे, और बहुत समझने के अपने बाप को भी इबादत गुजारी पे उकसाने वाले, बड़े औलिया की सफ में आप समझें कि शामिल। तो इनके बारे में आता है कि इनके चचा जादे एक दफा इनके घर आए, तो अभी इनकी शादी भी नहीं हुई हुई थी, यानी इतने यंग थे, तो इशा की नमाज पढ़ी, सोने के लिए चले गए दोनों अपने अपने बिस्तर पे लेट गए। अब्दुल मलिक ने चिराग बुझा दिया, तो इनके जो चचा जादे आए हुए थे ना, वो कहते हैं कि हम दोनों ने अपनी आंखें बस नींद के हवाले कर दी, यानी हम सो गए। जब आधी रात को कहते मेरी आंख खुली, तो मैं देखता हूं कि अब्दुल मलिक अंधेरे में खड़ा नमाज पढ़ रहा है और कुराने पाक की तिलावत कर रहा है, और वो बस एक आयत है वो पढ़ता ही जा रहा है। तो आयत में भी देखें, आयतें भी कई ऐसी होती हैं कि इंसान के लिए दिल को नरम करने वाली। तो कहते मैंने देखा कि वो इतने सोज के साथ, इतनी आहोजारी के साथ बार बार उस आयत की तिलावत कर रहे हैं, और हजारों कतार रोए जा रहे हैं, और इतना रो रहा है कि उसकी हिचकियां बंधी हुई हैं, और मुझे ऐसे डर लगा कि पता नहीं इसने मर जाना है आज। तो कहते मैंने ना जरा ऊंची आवाज में कहा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे करके जैसे कोई उठने लगता है ना, तो मैंने ऐसे इस अंदाज में कहा जैसे कि मैं उठ रहा हूं, और मैं उठते हुए ला इलाहा करते हुए उठ रहा हूं। तो कहते जू ही मेरी ये आवाज सुनी है ना उन्होंने, जो ही कहते कि मैंने ये कहा है ना, ऐसी खामोशी हो गई है जैसे वो कमरे में है ही नहीं, कि इनको पता ना चल जाए कि मैं खड़ा हूं और मैं पढ़ रहा हूं और मैं, या मैं रो रहा हूं अल्लाह के आगे। सुभान अल्लाह, कैसे वो अपने आप को छुपाने वाले थे, कैसे वो अपनी इबादत को, यानी सिर्फ अल्लाह को पता है ना, और किसी को भी नहीं पता चलने की जरूरत है। सुभान अल्लाह, तो कहते हैं ऐसे हो गया जैसे सन्नाटा बिल्कुल। अल्लाह हु अकबर, अल्लाह हु अकबर। असल में पता है क्या बात है, जो बर्तन भरा हुआ होता है ना उससे आवाज नहीं निकलती, और जो खाली बर्तन होते हैं ना वो उसमें जरा सी चीज आप डाल देंगे ना तो वो बड़ी आवाज आती है। तो वो हमारे जैसे भी खाली से हैं, इनमें से आवाजें ही आनी है ना फिर, क्योंकि अंदर है जो कुछ नहीं। जो बड़े लोग थे ना वो इस तरह नहीं हर तरफ अपनी बड़ाइयां करते फिरते थे, शेखियां करते फिरते थे। कितने आपको, आपके सामने भी तो अकवाल है ना, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला कैसे क्या करते थे, क्या फरमाते थे, हजरत उमर क्या फरमाते थे, ये है ना अकवाले सहाबा है ना। कहीं आपको मिलता है कि उन्होंने बड़ी बड़ाइयों की, मैं तो ऐसे करता था, मैं तो ये था, मैं तो वो था, कहीं ये लगता है आपको, कहीं आपने पढ़ा हुआ ऐसी चीजें? नहीं, और लोगों ने उनकी बताई कि वो ऐसे करते थे, वो थे ऐसे, हमने उनको ऐसे देख लिया, खुद तो नहीं वो अपनी बड़ाइयां कभी बताई। खुद खलीफा भी होते थे तो तब नहीं वो हजरत अबू बकर सिद्दीक बता रहे कि मैं वो बूढ़ी औरत के घर जाता हूँ, अंधी है तो मैं उसका काम करके आता हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह हमें भी ऐसा बना दे। बड़े दिल चाहिए ना इसके लिए, छोटे छोटे तो हमारे दिल हैं, आप कुछ कर लेते हैं तो अब क्या करें, बताना तो है हमने, बताएंगे नहीं तो चैन कैसे आए। अल्लाह अकबर, उन्दुर कैफ यफ्तरून अलल्लाह अल-कذب वकफा बिही इस्मन मुबीना। देखो तो सही इनको कैसे झूठ गढ़ते हैं अल्लाह के ऊपर, कैसे झूठ गढ़ा इनने। कि ये असल में यहूद की जैसे बात पीछे से चल रही है कि कहते हैं हम तो बख्शे बख्शाए हैं, हम तो अल्लाह के लाडले हैं, हम तो अल्लाह के बेटे हैं, नहनु अबना उल्लाही व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे भी उसके बड़े ही चहीते हैं, तो हमें क्या होना है, हमने थोड़ी कहीं, हमें थोड़ी कोई सजा मिलनी है, हम तो बख्शे बख्शाए हैं। वकफा बिही इस्म मुबीना, और ये काफी है खुल्लम खुल्ला गुना। ये जो बातें इन्होंने इफ्तरा की हुई है ना कि अल्लाह के ऊपर झूठ बांधना, जो बात अल्लाह ने कही ही नहीं है और अल्लाह तला के ऊपर लगा के कहना, ये खुल्ला गुना है, इससे क्या, इसमें क्या ढकी छुपी बात रह गई, ये तो खुल्लम खुल्ला एक बड़ा गुना की बात है। और आज अल्लाह के ऊपर किस तरह झूठ बांधे जाते हैं, कोई बात होगी ना, कोई किसी की मर्जी की बात होगी, उसको अल्लाह के ऊपर लगा के, नहीं अल्लाह ताला ने तो ये फरमाया, तुम्हें नहीं पता अल्लाह ताला ने तो ये कहा, अल्लाह का तो ये हुक्म है, हालांकि कहाँ पे वो हुक्म है कोई पता ही नहीं, खुद ही बना बना के सुनी सुनाई बातों को, अल्लाह का हुक्म है। अल्लाह के ऊपर बात करने से पहले बहुत सोचना समझना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, चाहे वो बात कितनी भी सुनी सुनाई हो, लेकिन ये तहकीक जरूर करनी चाहिए कि वाकई अल्लाह ताला का ये हुक्म है, वाकई अल्लाह ताला ने ये फरमाया है, नहीं अल्लाह इतनी भी बातों पे नहीं पकड़ लेगा। ये आपको किसने कहा, कहाँ पे सुना आपने, हाँ कि अल्लाह तो इतनी सी बातों पे नहीं पकड़ लेता, अल्लाह चाहे तो किसी बात पे भी पकड़ ले। वो नहीं आपने बात सुनी वो जो एक भाई दूसरे भाई को मना करता होता था कि तुम ना ये काम करो ये काम, वो बस उल्टे सीधे काम करता था जो भी करता था, और फिर एक दिन उसने कह दिया, खुदा की कसम है अल्लाह तुझे नहीं बख्शेगा, तू कभी भी नहीं जन्नत में जा सकता, अल्लाह की कसम है। अल्लाह ताला ने फरिश्ते से कहा दोनों की जान कबज करके ले आ, उसको कहा तू जा जन्नत के अंदर, और तूने मेरे ऊपर कैसे ये बात कही कि मैं इसको कभी नहीं बख्शूंगा और उसको कभी नहीं जन्नत में दाखिल करूंगा, कैसे तुमने कहा ये मेरे ऊपर कसम खा के। तो देखें अब एक बात ही थी ना, वो था तो वो बड़ा नेक और अपनी तरफ से तो वो अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर कर रहा, लेकिन उसने एक ऐसी बात कही जो अल्लाह ताला ने नहीं कही है, अल्लाह की कसम अल्लाह नहीं तुझे बख्शे, तुम कैसे अल्लाह की कसम खा के अल्लाह के ऊपर कोई बात कर रहे हो, कहा इसको जहन्नुम में ले जाओ। तो हम जब इतने आराम से कई बातें अल्लाह के ऊपर कह देते ना, अल्लाह की कसम इसने तो, अल्लाह ने तो उसको माफ ही नहीं करना, कितने आराम से मुंह से बोल देते, और अल्लाह के ऊपर कितने आराम से बातें करते। अब कहने को कोई कहे, मुंह की बात ही थी ना, कोई उसने बुराई तो नहीं की, अल्लाह ने देखो उस बात के ऊपर उसको पकड़ लिया, कभी इंसान मुंह से ही ऐसी बात निकाल देता कि वो हदीस में आता है कि इंसान अपना ठिकाना मशरिक से मगरिब तक जितनी जगह है इतना जमीन वो उसमें अस्तगफिरुल्लाह जहन्नुम के अंदर बना लेता है, इतना दूर अपना ठिकाना बना लेता है, तो कहने को तो क्या हुआ, सो वॉट, एक बात ही मुंह से कही है, मैंने कौन सा कोई बड़ा गुनाह कर दिया, लेकिन वो बात अल्लाह को बहुत बुरी लगी, वो बात अल्लाह को नहीं पसंद आई,
और उसने बेध्यानी में ऐसे ही कह दी, उसने उसको कोई बड़ी चीज नहीं समझा था। ये भी हदीस में है कि उसने नहीं कोई उसको बड़ी अहमियत से बात नहीं की थी, बड़ा कोई बहुत बड़ा समझ के नहीं कहा था। तो अल्लाह पकड़ना चाहे तो किसी बात के ऊपर भी पकड़ सकता है भाई। ये बेपरवाही से कहना अल्लाह ने दो, किसने कहा अल्लाह ने इस पे पकड़ना, अल्लाह ने नहीं इन बातों पे पकड़ना, तुम्हें क्या पता। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, हम इतने सारी चीजें अल्लाह के ऊपर ऐसे ही बोल देते हैं कि जैसे कि कोई परवाह ही नहीं। आप किसी इंसान के ऊपर भी ऐसे बोल देना कि उसने तो ऐसे नहीं करना, या तो वो ऐसे करेगी तो उसको गुस्सा आता है, तो मेरे पर क्यों बातें रख के कह रही हो, और हम अल्लाह की जात पे ऐसे करते हैं। अलम तो दीना, क्या आपने देखा नहीं उन लोगों को, यानी एक तरह से ताज्जुब की बात है ना कि जैसे हम कहते हैं हाय तुम्हें पता है ऐसा हुआ, तुमने देखा ये क्या हुआ, तो इस तरह से अलम तरा, तुमने देखा नहीं, इल्लदीना उन लोगों की तरफ, कौन से लोग, ऊतू नसीबम मिनल किताब, जो दिए गए किताब, यानी ये बेसिकली बात वही यहूदो नसारा, युमिनून बिल जिप्ति व ताहूत, वो ईमान रखते हैं जिप्त और ताहूत पे। यानी बड़ी हैरत की बात है कि देखो इनके पास किताब है, किताब का एक हिस्सा इनके पास है, फिर भी ये जिप्त और ताहूत के ऊपर ईमान रखते हैं। अच्छा अब क्या चीज है ऐसी जिप्त और ताबूत के भाई, जिसके ऊपर कहा गया कि देखो कितनी हैरत की बात है कि ये ईमान होते हुए, किताब होते हुए, इस किताब पे ईमान रखते हुए, अल्लाह की तरफ से जो किताब उनको मिली है, अल्लाह के कलाम उनके पास है, फिर भी ये जिप्त और ताबूत पे ईमान रखते हैं। तो जिप्त क्या है, सबसे पहले तो जिप्त को देखते हैं। जिप्त है हर बेफायदा चीज, बेअसल चीज, बेहकीकत चीज, फजूल काम, और इसके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जिनको के आप कहें जादू टूने, ये जो फालगिरियां होती हैं, नजूमी जो करते हैं, और कहानतें, फॉर्चून टेलिंग, ये सब इसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं तो सुपरस्टिशियस बातें, वो भी सब इसके अंदर आ जाती है। किस्मत मालूम करने की जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें आ जाती है। तो यहूदी ना इसके अंदर इन कामों में बड़े तेज थे। आपने देखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जादू करने में भी यहूद मुलव्वस थे, तो ये जादुओं के अंदर और ऐसी चीजों के अंदर बहुत थे। आपने सूरह बकरा में पढ़ा भी है कि इन्होंने किताब को तो पीछे डाल दिया, जाहिर है जब जिंदगियों में किताब नहीं रहेगी, जो अल्लाह की तरफ से कलाम नाजिल हुआ है वो नहीं रहेगा, तो फिर उसकी जगह यही चीजें ले लेती हैं कि किताब की तरफ तो आना नहीं, अब उसके बाद क्या है, बस वहां से हमारे काम हो जाएं, वहां पे क्या है, अब मुस्तकबिल का हाल मालूम कर लें, खुशबख्ती और बदबख्ती किसमें है, फलानी चीज रास्ता काट गई तो काली बिल्ली ने रास्ता काट लिया, अब तो काम होना नहीं, आज का दिन मनहूस है फलाना की। तो ये चीजें तभी आती हैं जब जिंदगी के अंदर किताब ना हो, जब किताब का इल्म आ जाता है ना, तो फिर जिंदगी स्ट्रेट हो जाती है, इंसान इन चीजों के पीछे नहीं जाता। एक हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अय्याफा और तुर्क, और यानी तुर्क क्या होता है कि ये फालगिरी के जितने भी तरीके हैं, यानी चाहे आप किस्मत के हाल मालूम करने वाली चीजें कह लें, जिनको आज क्या कहते हैं, वो तोता भी निकालता है ना, तोता वो जो कार्ड निकालेगा और फिर वो आप उसी तरह, आपका जो भी आपने पूछा है सवाल उस तरह होता है। आप उस जमाने के अंदर परिंदे उड़ाते थे इधर उधर, उनसे करते थे, तो वो अयाफा था और तुर्क था, जमीन के ऊपर ना लकीरें खींचते थे, और उससे भी किस्मत के हाल। आज भी लोग ऐसे हैं जो जमीन पे तो नहीं शायद खींचते होंगे, मगर वो ये पेपर के ऊपर ना लाइनें खींच के कुछ डब्बे बनाते हैं, और उसके अंदर फिर कुछ लिखते हैं, हिंट से लिखते हैं, फिर उसके से आपको ना हिसाब निकाल के बताते हैं, और ये शगुन लेना, ये बदशगुनियां लेना, ये लेना, इन सारी चीजों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जिप्त है, ये सारी चीजें जिप्त हैं, इसमें शामिल है। तो अल्लाह के अलावा किसी को भी समझ लेना कि ये हमें बताएगा कि आपकी किस्मत का हाल क्या है, ये चीज आपके लिए मुबारक है या मनहूस है, या ये दिन काम करना आपके लिए कैसा रहेगा, सफर करना कैसा होगा, फलां के साथ रिश्ता करना कैसा रहेगा, ये सारी फिर शिर्क में आ जाती है, क्योंकि अल्लाह ही जानता है गैब का इल्म। अब आपने कहा कि ये चीजें भी बताएंगी मुझे, इसीलिए जादूगर को भी कहा गया, वो भी शिर्क करता है। काहिन की जो बातों के ऊपर बिलीव करता है वो भी शिर्क कर रहा है, और काहिन खुद भी शिर्क करता है। तो इसकी तरफ दोबारा हम आते हैं, पहले ताहूत को भी समझ लें। ताहूत तो ज्ञानी से है, सरकशी, बगावत, हदों को क्रॉस कर देना। इसमें हर वो चीज है जो अल्लाह के दीन से हटा दे। इसका तर्जुमा बाज़ जगह पे आप देखेंगे लिखा होता है माबूदाने बातिल। तो माबूदाने बातिल भी यानी वो ही है कि जो इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटा देने वाले, इंसान को अल्लाह ताला की तरफ नहीं जाने देते। तो कोई अमल ताहूत हो सकता है, कोई इदारा ताहूत हो सकता है, कोई माशरा ताहूत हो सकता है, कोई हुकूमत ताहूत हो सकती है, कोई फर्द ताहूत हो सकता है, बुत ताहूत है, अल्लाह की रास्ते से हटा देते हैं ना, तो ये सब ताहूत है। कि देखो इनके पास किताब भी आ गई तो ये किसकी तरफ भागते हैं, जिब्त और ताहूत की तरफ। हैरत है इनके ऊपर। शायद आज भी अगर किताब उतर रही होती तो ये कहा जाता, देखो इनके पास कुरान भी आ गया फिर भी ये जिब्त में पड़े। में आप देख लें कि अपने माशरे में देख लें, जादू टूने ये कितने आम है, और ये एक कारोबार है बाकायदा, जो कि बहुत बहुत सक्सेसफुल कारोबार है, जिसमें आपने देखा होगा लिखा होता है कि 24 घंटे के अंदर ये आपका काम हो जाएगा, आपको जमानत है इसकी कि आपके महबूब कदमों में होगा, फलां का ये हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या इस तरह की खुराफात, तो हम परस्ती, सुपरस्टिशियस बातें और इस तरह की चीजें, इस को हमारे माशरे के अंदर, जो कि एक इस्लामी माशरे में तो कभी होनी ही नहीं चाहिए ऐसी चीज, क्योंकि ये तो इस्लाम से बिल्कुल ही ऑपोजिट चीज है, ये तो शिर्क है, और ये क्या चीजें हो रही हैं। आप देखें कि फिर इनके इश्तिहार बाकायदा दीवारों पे और पेपर्स, न्यूज़पेपर्स में और टीवी पे इश्तिहार, और कितने इनके आते हैं, क्योंकि ये कारोबार चलते हैं ना, और हमारे लोग यहाँ पे जाते हैं, तो जादू भी चलता है। फिर आप देखें फिर कितने टीवी पे बिठाए जाते हैं आजकल, कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी, अब वो कार्ड निकाल के बता रहे हैं, कोई दूसरा है वो पता नहीं उसका कोई और तरीका निकालने का, कोई सितारों को देख के बता रहा है, वो और शिर्क क्या होता है। अगर ये कार्ड बताएंगे तुम्हें, या ये लकीरें बताएंगी, या तोते बताएंगे, या कभी कोई पता नहीं किसी ने कहा कि क्या कहीं एक कोई कछुआ है वो बताता है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी हारेगी। या रब, यानी गैब का इल्म अब कछुओं को होने लगा, और किस्मतों के हाल ये हाथों की लकीरों के अंदर तलाश करते हैं। तो एक मोमिन को तो अपने आप को इन चीजों से बचा के रखना है, ये कह देना। फिर उसके बाद ये जितनी सुपरस्टिशियस बातें हैं, आप देख लें बिल्ली रास्ता काट ले गई है, आज पता नहीं क्या वो 13 नंबर मनहूस है, ये महीना मनहूस है, इस महीने में ना ये किया जाए, सफर में ना शादी की जाए, मुहर्रम में ना की जाए, फलान में ना की जाए, ये कहाँ से आई। अगर वो फलां जो तलाक हुई भी है, वो अगर लड़की को मेहंदी लगा देगी तो इसकी किस्मत खराब हो जाएगी, अगर बेवा इसके करीब आ जाएगी तो उसकी परछाई पड़ जाएगी, जिसका बच्चा मतलब फौत हो गया हो, मिसकैरेज हुआ हो, वो ना कहीं इसके करीब आ जाए। यानी हमने अल्लाह की जात पे तो ईमान खत्म ही हो गया ना, फिर तो ईमान इन चीजों पे है कि ये चीजें हमारा कुछ असर कर सकती हैं, फायदा या नुकसान। अब हम कुरान में क्या पढ़ते हैं, पता नहीं क्या पढ़ते हैं हम, इन यमसस्कल्लाहु बिदुर्रिन फला काशिफ लहू, अल्लाह ताला फरमाता है अगर अल्लाह तुम्हें कोई तकलीफ देना चाहे ना, कोई उसको उस तकलीफ से को हटा नहीं सकता फिर, और अगर वो तुम्हें कोई खैर देना चाहे तो वो हर चीज पर कादिर, कोई उसको उससे मना नहीं कर सकता कि आप क्यों इसको ये खैर पहुंचा रहे। लेकिन हमने अपनी जिंदगियां क्या बना ली है, तो हम मात ऐसा करेंगे, ऐसा किसी ने लिखा भाई हम वो मुर्गे पालते हैं, तो किसी ने कहा कि अगर वो बोलता है तो फकर आ जाता है, तो इसलिए ये कहां से आई, झाड़ू इस वक्त ना दो, उस वक्त ऐसे ना करो, पता नहीं क्या क्या चीजें हमने बनाई हुई है, और ये एक नहीं बेशुमार है। कोई चीज बैड लक ला रही है, आंख फड़क रही है तो अब बैड लक हो जाएगी, इस हाथ में खारिश हो रही है तो आप पता नहीं गुड लक होगी, कोई पैसा आएगा, फलानी चीज हो रही है तो क्या, खुदा के लिए इनसे निकलो। तुम्हारा अल्लाह पर ईमान है कि हर नफा और नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, वो नफा देना चाहे तो कोई नुकसान नहीं दे सकता, वो नुकसान देना चाहे तो कोई नफा नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, चाहे सारी दुनिया मिल जाए। तो फिर ये किसी के परछाइयां पड़ने से, किसी के आपकी शादी में आ जाने से, किसी का किसी नंबर का या महीने का, यही अगर नफे नुकसान देने लगे तो फिर बताएं तौहीद किधर चली गई आपकी, कहाँ है तौहीद? अल्लाह अकबर। दुल्हन रुख्सत हो रही तो वो चावल पीछे फेंक रही, चावल क्यों फेंक रहे हैं? नहीं, घर में रिस्क की कमी ना हो जाए, मुर्दा मुर्दे के चारपाई के नीचे रिस्क रख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें उसके नीचे डाल रहे हैं कि ये चला जाएगा तो इसके पीछे से रिस्क की कमी ना हो जाए। तो ये देते थे रिस्क आपको क्या, कि ये रुख्सत हो गई बच्ची तो अब रिस्क में कमी ना आ जाए? हमारी जिंदगियां भरी पड़ी हैं तो हम परस्ती से, ट्यूसडे के दिन काम नहीं होता, वेंसडे के दिन बुध हर काम शुद्ध, ये सुना मैं, मंगल में हर काम खराब हो जाता है। अल्लाह अकबर। इस्लाम तो आया था इन तौक और इन चीजों को से निकालने के लिए हमें, जिन्होंने हमारी जिंदगियों को मुश्किल किया हुआ, लेकिन हमने क्या कर लिया, फिर वही काम शुरू कर दिए। कोई अपने जहेज में, वो कहते सफेद सूट ना लेकर आए वरना तो उसका शौहर ही मर जाएगा, पता नहीं क्या वो सोग वाला वो पहन लिया। अल्लाह अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। फिर आज हमने जो ज्यादा जरा चलो दीन की तरफ आ गए, उन्होंने कहा भाई बाहर से फाले क्यों निकलवानी, हम कुरान से ही फाले निकालने शुरू कर देते हैं। अच्छा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल भी तो काम पढ़ते थे ना कि ये किया जाए या नहीं किया जाए, तो कुरान आपसे ज्यादा कौन जानता था? क्या आपने फले निकाल ली कुरान से? चलो सहाबा कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए, उनको भी तो कितने मसाइल होते थे, उन्होंने भी तो कहीं शादियां करनी, कहीं सफर करने, कहीं कारोबार करने हैं, उन्होंने भी तो ये काम करने होते थे, तो वो कोई फले निकाल लेते कुरान से? उन्होंने भी ना निकाल ली। लेकिन हमें कितना बड़ा एक फन आ गया, किसी ने कहा इस्तखारे करने तो बड़े मुश्किल काम है, हमसे नहीं इस्तखारे होते, फिर बाद में हमें ख्वाबें आती हैं वो तो हमें समझ ही नहीं आती, तो हम तो बस सीधा सीधा इस तरह बस को किसी ने हमें बता दिया ऐसे करके इतने इतने पे देख लो, पता नहीं किस तरह से वो पता नहीं कौन सी लाइन, सातवीं लाइन, उसमें सातवां लफ्ज और पता नहीं कैसे करके, तो वो बस आपका जवाब है। यार अब इन पे वहियां उतरी, किसने इनको बताया, ये किसने बताया? क्या हमने बना के रख लिया इस इस्लाम को, इस दीन को, जो एक सिंपल दीन है, एक स्ट्रेट दीन है, वो किधर हम जा चुके हैं? ये तो हम परस्ती ना हिंदुओं में बहुत है, और वहां से सारी चीजें हमने लेनी, हर कल्चर में इसी तरह, अरबों में कोई और किस्म की है और दूसरों में कोई और किस्म की है। तो जो ईमान वाला है ना, पक्का ईमान वाला, तो जिब्त और ताहूत पे ईमान ही नहीं रखता। अल्लाह ताला तो इनके ऊपर हैरत करके फरमा रहे हैं, इनको देखो जरा इनका दिमाग क्या है, कि किताब होते हुए ये जिब्त और ताहूत के ऊपर ईमान रखते, तो हमारे ऊपर भी फिर आफरीन है कि कुरान जैसा कलाम होते हुए हम जिब्त और ताहूत में पड़े हैं, हमें वो बाबा बहुत लगता है कि वो हमारे काम करके देगा, और उसके पास चली जाऊंगी तो क्या होगा, किस्मत बदल जाएगी, और शादी ना करना, पहले पहले किसी से हिसाब निकलवा लो कि रिश्ता ठीक भी है कि नहीं, इस्तखारों वगैरह को छोड़ो, तो इस्तखारे की समझ ही नहीं है ना, इसलिए भी ये काम करते हैं, अपने दीन का पता नहीं तो जिब्त और ताबूत में ही पढ़ेंगे ना, जब जब याद रखें दीन से दूरी होगी ना तो फिर ये काम आएंगे, यही चीजें हैं जो जिंदगियों में होंगी, यही मशगले अपनाएंगे। तो अगर हमने पहले ऐसे काम किए हैं, उनसे तौबा इस्तगफार करें, आज ही तौबा करें, और आइंदा के लिए अपने साथ वादा करें कि कभी नहीं करना। इन चीजों की प्रमोशन बहुत होती है ना ऐसे माशरों में, जाहिर है दीन तो है नहीं तो फिर यही चीजें चलेंगी ना, फिर यही इसके इश्तिहार आएंगे ना, माशरा का पूरा ही दीन से नावाकिफ है।
तो फिर इनकी दुकानें और इनके कारोबार, जाहिर है आप खुद सोचें जिस माशरे में इन लोगों के कारोबार इतने चल रहे हैं कि उनको टीवी पे बाकायदा बड़े उससे बिठाया जाता है कि ये माहिरे इल्मे नजूम है, ये माहिरे फलां हैं, ये पता नहीं क्या क्या के माहिर हैं, उनको बिठाया जाता है बड़ी इज्जत के साथ। तो सोचें कि उस माशरे के बिगाड़ का क्या हाल होगा, वहां पे बिलीफ क्या है, और इनकी बाकायदा यानी मशहूरी की जा रही है, इनका इश्तिहार दिया जा रहा है। हम तो जो चीज टीवी पे देख लेते हैं तो हमारे दिमाग पे इतना असर हो जाता है कि ये तो टीवी पे भी आए थे, तो ये तो बहुत ही अच्छे ही कोई होंगे, बहुत ही जबरदस्त होंगे, फिर हम उनके पीछे चल पड़ते, इसका इश्तिहार देख लेंगे वो, फिर बस कोई इंतहा नहीं है हमारे इसकी। तो ये तागूत के ऊपर चलते, तागूत तो है ही ऑपोजिट, ऑपोजिट ताकतें जो अल्लाह के रास्ते से खुद भी बिगड़ी नहीं है, बगावत की भी है और लोगों को भी हटाते हैं, उनके पीछे चलते हैं, उन पे ईमान रखते हैं। अल्लाह हू अकबर। और इब्ने अब्बास ने जिप्त से फरमाया कि इससे मुराद है टूने टूट के, वो मुराद है। वो यकूलून लिल्लदीन कफरू, और वो कहते हैं उन लोगों से जिन्होंने कुफर किया, हा उलाई अहदा मिन अल्लदीन आमनु सबीला, कहते हैं ये तो काफिर जो थे ना, वो इनके पास जाके कहते थे आप बताएं ना कि हम ज्यादा सही हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ज्यादा सही हैं। वो कहते तुम क्या करते हो, वो कहते देखिए ना हम तो हाजियों को पानी पिलाते हैं, हम तो जिबा कर करके जानवर लोगों को खिलाते हैं, हम तो गुलामों को आजाद करते हैं, हम सिला रहमी करते हैं। तो वो कहते वो क्या करते हैं, यहूदी कहते वो क्या करते, उनसे क्यों पूछने जाते थे, वो पढ़े लिखे थे ना, वो किताब वाले थे ना, तो इसलिए उनसे पूछने जाते थे। तो कहते वो असल में ये करते हैं, वो तो रिश्ते तोड़वाते हैं, रिश्तों को तोड़वाते हैं, वो ऐसे हैं। तो वो कहते बस फिर तुम ही हिदायत पे हो, असल सीधे रास्ते पे तो तुम ही हो। हालांकि इनको सोचना चाहिए कि ये खुद किताब वाले थे, तो ये जानते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे नबी हैं, ये जानते थे, इनसे ज्यादा तो कोई जानता नहीं था। लेकिन फिर भी सोचो इनकी अकलों का और इनकी दीन में किस कदर जवाल आ गया था कि वो जो हक पे हैं उनको कह रहे हैं उनसे तो ज्यादा तुम ही हिदायत पे हो, यानी जो बुत पूज रहे हैं उनको कहते हैं तुम हिदायत पे हो। जैसे आज भी हम बहुत दफा कह देते हैं ना मुसलमानों से ज्यादा तो ये अच्छी हैं, कैसे हो सकता है मुसलमानों से ज्यादा वो अच्छी हैं जो कि शिर्क करने वाले हैं, तुमने ओवरऑल ही मुसलमानों से ज्यादा उनको अच्छे कर दिया। हाँ कोई ये कह सकता है कि किसी का अखलाक ज्यादा अच्छा है, इसके ये किरदार में ये चीज बहुत अच्छी है जो फला मुसलमान से ज्यादा अच्छी है, अखलाक में अच्छा हो सकता है, कोई किरदार में अच्छा हो सकता है, मगर ओवरऑल कैसे कह सकते हैं कि ये मुसलमानों से अच्छी है, हम तो इतने इतने बुरे हैं। और फिर आगे से माशाल्लाह कुछ लोग ना ऐसे भी कहते हैं, हाँ आप कहते हैं ये जहन्नुम में जाएंगे, वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, वो कैसे जहन्नुम में जाएंगे। तो इससे पता चलता है कि हमारी दीन की समझ क्या है, सोचे क्या हमारी दीन की समझ है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने फरमाया इन अल्लाह ला यग़फिरु अन युशरा कभी व यग़फिरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा, और ये कहते हैं वो तो हमसे ज्यादा अच्छे हैं, आप क्यों कहते हैं कि वो जहन्नुम में कभी जाएंगे, यानी शिर्क करना तो कोई बात ही नहीं है ना, बस उन्होंने अस्पताल बना दिए, यतीम खाने बना दिए, तो बस ठीक है। वह यकूलूना लिल्लज़ीना कफरू अहाउलाई अहदा मिन अल्लज़ीना आमनू सबीला, यानी इनके देखो कि कैसी मत मारी भी है कि बुत परस्तों को कह रहे हैं कि वो हिदायत पे ज्यादा हैं, और एक अल्लाह के मानने वालों को कह रहे हैं कि वो तो हिदायत पे नहीं है, वो तो तुमसे कम ही है। उलाइक अल्लज़ीना लानहुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जिन पे अल्लाह ने लानत कर दी, वो मैं यलअनिल्लाह फलन तजिद लहू नसीरा, इसके ऊपर अल्लाह लानत कर दे ना फिर उसका कोई मददगार नहीं, अल्लाह ने इनको अपनी रहमत से दूर कर दिया, यही मतलब है ना लानत का, रहमत से दूर कर देना। अब ये मतलब नहीं है यहाँ पे कि अल्लाह ने लानत कर दी, यानी अल्लाह उनके ऊपर लानत भेज रहा है कि अल्लाह ताला कह रहा है उनके ऊपर लानत हो, लानत का मतलब ये कि अल्लाह ने बस अपनी रहमत से हटा दिया इनको। जब अल्लाह किसी को अपनी रहमत से हटा दे तो फिर उसकी मदद खत्म हो जाती है, यानी अब अल्लाह की मदद इनके साथ नहीं होगी। ठीक है, जब कोई इंसान किसी इंसान पे लानत करता है ना तो ये फिर बद्दुआ होती है फिटकार की, कि इसके ऊपर फिटकार हो, ये अल्लाह की रहमत से दूर हो जाए। लेकिन जब अल्लाह ताला करता है तो इसका मतलब अल्लाह ने उनको दूर कर दिया। मगर ये है कि कोई इंसान भी दूसरों पे लानत ना करे, क्योंकि ये बहुत बड़ी बद्दुआ है, ये ऐसे खत्म नहीं हो जाती। ये किसी ने किसी के ऊपर लानत की तो वो यहीं पे उसके जो कलिमात हैं वो मतलब खत्म हो जाए यहाँ पे, ऐसे नहीं होता। वो जो कलिमात है ना कि कोई कहता है इसके ऊपर लानत हो, फलाने के मुंह पे लानत हो, फलाने का, ये कलिमात जो है ना ये आसमान की तरफ चढ़ते हैं, आसमान की तरफ चढ़ते हैं। हाँ, अब वहां के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं इन कलिमात के लिए। तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि ये क्या बात है। ये वो लानत वहीं पे फिरती रहती है, फिरती रहती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। छोटी बात नहीं है जो हम मुंह से निकालते हैं, औरतें वो तो बहुत लानत करती हैं ना, इसलिए हमें बहुत समझने की जरूरत है। तो फिर वो फिर रही होती तो अल्लाह ताला पूछते हैं ये क्यों, तो फरिश्ते बताते हैं कि या अल्लाह ये फलाने वहां फलां के ऊपर लानत की है। अब अल्लाह ताला फरमाता है जिस पे लानत की गई है अगर तो वो उसका हकदार है, उसका मुस्तहिक है, तो ऊपर उस पर डाल दो लानत। अगर वो उसका मुस्तहिक नहीं है तो कहने वाले पे डाल दो। लिहाजा बाज दफा इंसान अपने आप पे खुद ही लानत डाल रहा होता है, ये छोटी बात है। अब जैसे मसलन शैतान के ऊपर लानत, तो वो तो ठीक है, अब लानत का एक मुस्तहिक। बाज दफा लोग अपने बच्चों पे ही लानत भेज रहे होते हैं, बाज दफा अपने और किसी कोई प्यारे रिश्ते हैं उनके ऊपर ही लानत भेज रहे होते हैं और खुद नहीं सोचते कि हम क्या कह रहे हैं, या किसी और के ऊपर भी भेज रहे होते हैं, प्यारे ना भी हों किसी और पे भी, लेकिन वो उसका मुस्तहिक नहीं है, वो इस वो नहीं है, डिजर्व करता नहीं है कि आप उसके लिए ये बात कहें, तो फिर वो वापस ही आपके ऊपर आ जाएगी। तो फिर केयरफुली बात करनी चाहिए, जुबान का इस्तेमाल भी से देखें ऐसे कितना जरूरी है कि इंसान केयरफुल रहे। ये सारी जो बातें हम पढ़ रहे हैं, कहीं शेखियां मारनियां, कहीं लानतें भेजनी, अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्की फइदन ला यूतून अन्नास नकीरा, अगर इनके पास होता ना कुछ हिस्सा भी अल्लाह की बादशाहत में से, खास तौर पे यहूदियों को कहा जा रहा है, मगर जो भी इस किरदार के हामिल होंगे वो इसमें आ जाते हैं। याद रखें कि कुरान पाक का जो एक 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 शाने नजूल होता है ना किसी आयत का, तो अब ये मतलब नहीं कि वो स्पेसिफिक उसी बात के साथ बिल्कुल जुड़ गई है और अब ये किसी और के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकती। नहीं, एक उसका होता है स्पेसिफिक उस वक्त जब वो नाजिल हुई तो क्या हालात थे, एक कहता है उसका एक अमूमी माना कि जो भी फिर वैसा होगा फिर वो भी उसी में आएगा। अब वो कहा गया कि क्या इनके लिए एक हिस्सा है बादशाहत में से, ये है, इसको कहते हैं एक सवालिया अंदाज है, इस्तफा में इनकारी कहते हैं इसको, इस्तफा में इनकारी। जैसे हम कहते हैं क्या तुम गंदे बच्चे हो, तो मतलब क्या होता है, अब पूछ थोड़ी रहे हैं तुम हो के नहीं हो, बल्कि है कि नहीं हो ना तुम गंदे बच्चे, तो क्या तुम गंदे बच्चे हो, ये कहने का मतलब ही ये है कि तुम तो नहीं हो ऐसे। तो इसी तरह ये कहा गया अम लहुम नसीबुम मिनल मुल्क, क्या इनके पास एक हिस्सा है बादशाहत का, तो पूछा नहीं जा रहा उनसे कि आपके पास है कि नहीं, बल्कि यानी नहीं है इनके पास कोई भी हिस्सा बादशाहत का। अगर होता फइदन ला यूतून अन्नास नकीरा, तो ये लोगों को एक नकीर भी ना देते। अब नकीर क्या चीज है, पहले फतीला की बात आई, अब नकीरा की बात आई, तो ये भी खजूर के साथ ही रिलेटेड है, तो दोनों का आपको फर्क पता होना चाहिए। फतील क्या था, गुठली के अंदर जो सुराख में जो धागा होता है। नकीर क्या है, नकीर ऊपर आप देखिएगा जो इसको खड़ी करके खजूर की गुठली को, तो आप देखेंगे ऊपर एक सुराख होता है, एक मतलब बिल्कुल समझ लें तिल बराबर साइड में ना, उसकी डॉट कह रहे हैं, नुक्ता कह दें, नकीर से नुक्ता मेरे ख्याल याद रहेगा, इस ये आसान तरीका है ना याद रखने का। तो वो जो नुक्ता है, इतनी बराबर भी चीज ये किसी को ना देते अगर इनके हाथ में, तो वाकई आप दुनिया में देखें अल्लाह अकबर, इंसान कहता है इसीलिए दुआ करता है, या अल्लाह मुझे कभी किसी का मोहताज ना करना, क्योंकि अगर इंसानों के हाथ में रिस्क हो ना तो वो तो किसी को भी ना कुछ दे, अगर कोई किसी को दे भी देता ना कोई चीज जरा सी भी दे देता है, तो उसके बाद 10 दफा पूछते हैं, हाँ नहीं उनके घर पे तो टीवी भी है, उनके घर पे तो फ्रिज भी है, वो तो मशीन भी रखते हैं, अब हम उनको क्यों दे। यानी उसकी इतनी बदतर हालत हो जाए कि बिल्कुल सड़क के ऊपर बैठा होगा और ना सर पे छत होगी ना कुछ होगा, तो तब देंगे, हम क्यों दें इसको, हम कितनी ऐसी बातें करते हैं, फिर किसी को जरा सा देते हैं, हालांकि कौन से हमने उसको खजाने दे देने होते, पर फिर भी हम जेब से निकालते भी कितना वो करते हैं, हालांकि इसका अजर हमें मिलना होता है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये अगर क्या इनके पास एक हिस्सा है बादशाहत का, अगर होता तो इन्होंने तो किसी को कुछ भी नहीं देना था, इनके ये कंजूसी के हाल है। इन बुखल की पहले भी बात आई थी ना कि ये खुद भी वकील है और दूसरों को भी रोकते हैं कि तुम भी ना दो। तो जो भी ऐसी इस किस्म की क्वालिटीज रखेगा अपने अंदर। तो उसने वही काम किया जो यहूदियों का काबिल मुजम्मत कहा जा रहा है, कि इतना बुखल कि किसी को जरा सी भी चीज देने के रवादार नहीं है। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाह मिन फजल, या वो हसद करते हैं लोगों से जो अल्लाह ने उनको अपने फजल से दिया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबुवत मिल गई इसके ऊपर उनको बड़ा हसद था, इनके यहाँ क्यों आ गई, अरबों में क्यों आ गई, ये तो हमारे अंदर बनी इसहाक में आनी चाहिए थी, बनी इसराइल में आनी चाहिए थी। तो हसद क्या चीज होती है, पहले भी मैंने आपको बताया था, हसद मतलब होता है किसी के पास नेमत देख के उसके नेमत के जवाल की तमन्ना रखना कि इससे छिन जाए ये चीज। तो इनको हसद है, हालांकि इन्होंने कौन सा अपने नबियों के साथ कोई बहुत अच्छा सलूक किया था कि जो ये कहें कि हमारे पास ही आते तो पता नहीं हमने क्या करना था। इन्होंने तो जो आगे आ रही है बात कि जो सलूक किया वो तो आपको पता ही, आपने सारा पढ़ा है कि ये क्या करते थे। तो ये क्या हसद करते हैं लोगों से जो अल्लाह ने उनको अता किया और अपने फजल से दिया, किसी की भी मिल्कियत नहीं है, जो भी चाहे इज्जत के खजाने हैं, चाहे रिज्क के खजाने हैं, चाहे तरक्कियों के खजाने हैं, कोई भी नेमत है वो अल्लाह का फजल है ना, अल्लाह का फजल है ना, कोई किसी की अपनी काबिलियत कोई भी चीज नहीं है। तो फिर ये तकसीम कौन करता है, कौन देता है, किसी को इज्जत देना, मकाम मर्तबा देना, कोई स्टेटस देना, कोई माल देना, ये किसका फैसला होता है? ये नहीं कि कोई लायक बहुत था इसलिए उसको मिल गया, फलाने के अंदर बड़ी ये खूबी थी, वो भी खूबी भी तो अल्लाह ने ही दी ना। तो असल में बात तो क्या है कि अल्लाह ही है देने वाला ना। अब कुछ लोग किसी की ऐसी चीज को देखकर वो उनके अंदर ना एक कुढ़न होती है, जलन होती है और गुस्सा एक आता है कि क्यों इसको मिला, और उनको दिल चाहता है कि इसको ना मिले, इसको क्यों ये खैर मिल गई। अब पहले तो पहले बात आई ना कि देखिए, अब यहां पे एक बात आ गई हसद की और पहले बात आई बुखल की, अब दोनों में एक चीज कॉमन क्या है बताएं, बुखल और हसद में एक चीज क्या कॉमन है? एक चीज जो कॉमन है वो ये है कि किसी को खैर ना मिले, बस किसी को ना खैर मिले, अव्वल तो मिले ही नहीं, अगर मिल गई है तो छिन जाए, बस खत्म हो जाए उससे, समझ आई बात? तो ये दोनों इनकी क्वालिटीज थी। आज भी दुनिया में यहूदी बहुत स्टिंजी होते हैं, बहुत बखील हैं, वो पैसों को बहुत जमा करते हैं, और हसद देखें आए तो खैर मुसलमानों में ही हसद कोई कम नहीं है, ये कि घर में रहने वाले बहन भाइयों में हसद, खानदानों में हसद, दोस्त अहबाब के अंदर हसद, हसद ही हसद है, और हसद कबीरा गुनाहों में से है, यानी अगर इंसान तौबा नहीं करेगा ना, तौबा के बगैर मर गया तो कबीरा में से है। फिर भी हम देखें कि कहीं किसी को कोई भलाई मिल जाए तो फिर हमारे दिलों के हाल क्या होते हैं, दिल की कुड़न का हाल क्या होता है, दिल ही दिल के अंदर वो लावा पकता है, और खुशी तब होती है जब किसी दिन वो आके ये कहे कि हाय ये तो इस तरह से हो गया। इसीलिए मिन शर्री हासिदिन इज़ा हसद, ये हासिद के हसद से भी, ये इसका भी शर होता है, इससे भी अल्लाह की पनाह में आने के लिए दुआ की गई है, ठीक है? तो ये इंसान को नुकसान देता है दूसरे का हसद करना, किसी को अच्छा पहनता देख लिया, किसी को अच्छा रहता सहता देख लिया, किसी के हस्बैंड को अच्छा देख लिया, किसी की बड़ी नौकरी और तरक्कियां देख ली, तो ये चीजें इंसान को जो अंदर, अब मानेगा तो कोई भी नहीं कि मैं हासिद हूं, लेकिन वो ना हसद कहीं ना कहीं आ जाता है, जुबान से ऐसी बातें निकलने लगती हैं जो उसके खिलाफ हैं, और उसकी चीज की बुराइयां करने लगते हैं, इल्जाम तराशियां करने लगते हैं, उसको लेट डाउन करने लगते हैं। तो इसका फिर इलाज क्या करें? एक तो सबसे पहली बात है कि उसको बरकत की दुआ दे दें, पहले भी मैंने बताया था उसको बरकत की दुआ दे, बारक अल्लाह फी। दूसरे ये है कि अपने लिए वो चीज मांग ले, अल्लाह तआला ने फरमाया ना कि ये मेरा ही फजल है ना, कि मैंने ही दी है, तो अल्लाह से मांग ले। और तीसरी चीज, अपने आप को ये समझाए इंसान कि ये अल्लाह की तकसीम है, और अगर मैं अल्लाह की तकसीम पे राजी नहीं होती तो मैं अल्लाह के फैसलों से राजी नहीं, ठीक है? तो ये जो फजल है जो अल्लाह जिस रब ने उसको दिया है वो मुझे भी दे सकता है। चौथी चीज ये कि इंसान ये सोचे कि हर नेमत के साथ आजमाइश है, और ये भी किसी के लिए आजमाइश हो सकती है। मुझे क्या पता, अगर मुझे ये चीज मिल जाती तो पता नहीं मैं इसको संभाल ना सकती, और यही मेरे लिए जवाल का बायस बन जाती। पता नहीं अगर मेरे पास ये चीज होती तो मैं क्या रिएक्ट करती, मैं अल्लाह से दूर ही कहीं ना हो जाती। हो सकता है ये चीज मेरे लिए बेहतर ना होती। हाँ, तो अपने आप को इस तरह से समझाना चाहिए, ना कि अंदर जल जल के और कुड़ कुड़ के, और फिर उसके बाद इंसान अपने आमाल को भी जाया कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नेमत वाला हसद किया जाता है। जहाँ नेमतें आती हैं ना, वहां पे हासिद भी पैदा हो जाते हैं, जिनसे फिर एक आंख नहीं उनको भाता कि ये क्यों इसको मिला। ठीक है, तो बिल्कुल ये है कि ज़करिया अलैहि सलाम ने हजरत मरियम के पास जब फल देखे थे तो वो जले कूड़े नहीं थे कि ये क्या कल की बच्ची है, इसको इतना कुछ मिल गया। हाँ, बल्कि उन जब हजरत मरियम ने फरमाया कि ये अल्लाह ही का फजल है, तो खुद भी अल्लाह से मांग लिया। वो अल्लाह के खजानों पे नजर रखे, अल्लाह के खजाने बड़े वसी हैं, वो चाहेगा तो आपको उससे भी ज्यादा दे देगा, मगर उससे ना जले कूड़े। और फिर इंसान अपनी नियमतों के ऊपर भी नजर करे कि मुझे भी तो अल्लाह ने ये चीजें दी हुई हैं जो शायद उसके पास भी ना हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर भी पहली उम्मतों की सी खसलतें आ जाएंगी, हसद और बोझ। हसद और बोझ उनमें भी था, और आज देखें। और फरमाया, हसद से बचो, ये नेकियों को इस तरह खा दे जाता है जैसे आग सूखी लकड़ियों को खा जाती है। तो ये ना हो कि हमारी नेकियां ही सारी जल के खत्म हो जाए और हम समझे कि हम बड़े नेक हैं। फकद आतीना आला इब्राहिम अलकिताब वल हिकमत व आतीना हुम मुल्क नजीमा। ये उनसे क्यों हसद कर रहे हैं? ये नहीं देखते हमने आले इब्राहिम को किताब भी दी, हिकमत भी दी, उनको मुल्क अजीम भी दिया। यानी मैंने जैसे आपको बताया कि इनके पास, खुद के पास भी तो पैगंबर आए थे, और एक नहीं बेशुमार पैगंबर आए। आले इब्राहिम में देखिए आप, इसहाक अलैहि सलाम की औलाद में से याकूब अलैहि सलाम, जिनको लकब इसराइल था, उनके अंदर इतने पैगंबर होते थे, एक एक वक्त में बहुत सारे पैगंबर होते थे। किताबें भी इनके पास आई, हिकमत की तालीम भी आई, इनको मुल्क अजीम भी दिया गया। इन्हीं में तो दाऊद अलैहि सलाम और सुलेमान अलैहि सलाम आए थे, और जैसी उनको हुकूमत मिली वैसी हुकूमत किसी को भी नहीं मिली, कभी नहीं मिली। कि सुलेमान अलैहि सलाम ने दुआ की थी कि यार मेरी जैसी बादशाहत किसी और को ना देना मेरे बाद। वो जैसी, और वाकई देखें उनकी हुकूमत ना सिर्फ इंसानों पे, जिन्नात पे भी थी, हैवानों पे थी, परिंदों के ऊपर थी। तो इतना कुछ तुम्हें भी तो मिला हुआ है। और इनका तो, इनकी आप हिस्ट्री पढ़ें तो इनका एक पीरियड आता है किंग्स पीरियड, जिसमें बड़े बड़े बादशाह, सदियों पे मुहित है वो पीरियड, बड़े बड़े बादशाह आए। तो तुम्हें क्या नहीं मिला जो तुम दूसरों से हसद कर रहे? असल में होता यह कि इंसान अपनी चीजों को तो भूल जाता है, किसी को एक भी मिले ना तो उसका दिल जल भुन जाता है कि उसको क्यों मिल गई। फमिनहुम मन आमना बिही वमिनहुम मन सद्दा अन। तुम्हारे पास भी देखो किताबें भी आईं, बादशाहतें भी मिली, लेकिन फिर भी इनमें ऐसे लोग थे, बाज तो ईमान लाए और बाज ऐसे थे जो रुक गए। और सद्दा के अंदर खुद भी रुकना होता है और दूसरों को भी रोकना होता है, ना खुद मानते थे ना दूसरों को मानने दिया। वकफा भी जहन्नम असाईर, और काफी है जहन्नम की भड़कती हुई आग इनके लिए। इन लदीन कैफरू भी आयातीना। ये भी असल में उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात चली आ रही है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया कि सिर्फ उनके लिए नहीं, जो भी कुफर करेगा अल्लाह की आयात के साथ, अल्लाह की आयात का जो भी इनकार करेगा, अल्लाह का हुक्म आ जाए और उसके हुक्म को मानने से कहे हम, मैं तो नहीं मानता, मैं तो नहीं मानता कि जकात होनी चाहिए, मैं तो नहीं मानता कि नमाज है। एक होता है ना पढ़ना, एक होता है ना कोई चीज देना, ज़कात अदा नहीं की या नमाज नहीं पढ़ी अपनी कोताही की वजह से। एक बंदा कहता है मैंने मानना ही नहीं, मैं नहीं मानता इसको, ये उनकी सजा है। चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो अपने आप को मुसलमान कहता हो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन जब इन हिदायत का पैगाम आता है ना, तो इंसानों के तीन ग्रोह होते हैं। एक मान लेता है, पूरी तरह मान लेता है, दूसरा कहता है नहीं मैंने नहीं मानना, वो अपने आप को कोई भी कहता रहे। तीसरा वो होता है जो ऊपर ऊपर से दिखाता है कि मैंने मान लिया है, अंदर से नहीं माना होता। जो पहला ग्रोह है जो पूरी तरह मान ले, सिर्फ वो जन्नती है, बाकी दोनों ग्रोह जहन्नमी है। चाहे ऊपर ऊपर से कहते रहे हमने मान लिया, हमने मान लिया, अंदर से कोई नहीं माना, मुनाफिक है ना वो। तो सौफ नुस्लीहिम नारा अन करीब, हम दाखिल करेंगे उनको आग में। अल्लाह हु अकबर, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। कुल्लमा, जब कभी, नदीजत, पक जाएंगी, गल के बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, मैंने जैसे आपको मिसाल दी कि गोश्त गल के इतना रेशा रेशा हो जाए कि हाथ लगाए तो वो झड़ जाए, ऐसा पक जाना। जुलूदु हम खा लें उनकी, बदल ना हम बदल देंगे हम, जुलूदन खालों से, गैरहा इनके अलावा, किस लिए क्यों ऐसा किया जाएगा, लियज़ूकुल अज़ाब, ताकि वो चखते रहें अज़ाब को। और आज साइंस ने ये प्रूव किया है कि इंसान का जो जो पेन है ना, पेन वो सिर्फ ये स्किन पे होती है, अगर स्किन ना हो तो पेन का एहसास खत्म हो जाता है, ये आज साइंस कहती है। और अल्लाह ताला ने वो बात 1400 साल पहले फरमाई कि जिल्दों पे जिल्दें इनकी बदली जाएंगी ताकि वो अजाब को चखते रहें, क्योंकि अगर एक जिल्द खत्म हो गई आग से तो फिर उसके बाद तो अजाब की सेंसेशन, उसकी जो जो उसका उसकी जो महसूस होना है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए वहां पे एक खाल नहीं होगी, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, एक उतरती जाएगी क्योंकि वो गल जाएगी बिल्कुल, पक जाएगी, और उसके बाद दूसरी आ जाएगी ताकि अजाब की तकलीफ उनको पहुंचती रहे। और ये ऐसा अजाब नहीं कि दुनिया की आग का अजाब हो, दुनिया की आग से भी हम पनाह मांगते हैं कि अल्लाह दुनिया की अजाब आग जो है, ये जो जलाती है ना, इंसान उसको भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर एक हाथ जल जाए कभी खाना बनाते हुए, एक उंगली जल जाए, रात भर नींद नहीं आती इंसान को, ज्यादा जल जाए ना, जो लोग ज्यादा जल जाते हैं वो तो फिर सरवाइव भी नहीं कर पाते, वो तो फिर अस्पताल में ही दम तोड़ देते हैं, कहते हैं अभी इनके इतने डिग्री तक इसका इसके बर्न्स हो गए तो ये अब नहीं सरवाइव कर सकता। दुनिया की आग से तो इंसान मर जाता है ना, आखरत की आग से मरेगा नहीं, वो रहेगा जिंदा ही, मगर जलने का एहसास होता चला जाएगा। और जला हुआ जो जो जगह होती है उसकी जो तड़प और जलन, अब सोचे जरा सा पानी इंसान पे गर्म गिर जाए ना तो कितनी एकदम इंसान तड़प उठता है, ऐसा लगता है जैसे करंट पूरी बॉडी के अंदर चला गया। शावर में आप कभी देखें, अगर आपके ऊपर कोई एकदम से गर्म पानी आ गया, या आप बर्तन धो रहे थे एकदम गर्म पानी आ जाता है, तो एकदम आप अपना हाथ हटाते हैं, एक स्प्लिट सेकेंड में आप अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, देर नहीं लगती। वो क्या हाल है कि एक इंसान पूरा का पूरा आग में जल रहा है और एक के बाद एक स्किन आ रही है, और ये कितनी दफा होगी, कुल्लमा, जब कभी पकेंगी, कितनी दफा ये सारा कुछ होगा, क्या ऐसा होगा कि आग जलाती रहे जलाती रहे जलाती रहे, फिर कुछ अरसा गुजर जाए, वो जल जाए जब स्किन, तो उसके बाद फिर दूसरी स्किन आ जाए, नहीं, एक दिन में 70,000 टाइम्स वो ये खाल जलेगी और फिर दूसरी नहीं आएगी एक दिन में। और हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं कि एक एक साथ में 100-100 बार बदली जाएगी, एक एक साथ में, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी। और फिर सोचें जरा कि क्या कोई ख्वाहिश, कोई चीज इतनी इंसान को महबूब हो सकती है कि वो उसकी खातिर आग का सौदा कर ले और कहे कोई बात नहीं है, अगर इस आग में चले भी जाएं तो कोई बात नहीं है। और इंसान कैसे होगा, ये वाला जिस्म नहीं होगा, जाहिर है ये वाला जिस्म तो सह ही नहीं सकता इस सब को, जाहिर है कोई स्पेशली अल्लाह ताला देंगे जो उस आग में भी मरेगा नहीं, तो वो जिस्म कैसे होंगे। मुसनद अहमद में है कि जहन्नमी जहन्नम में इतने बड़े बड़े बना दिए जाएंगे, इतने उनके जिस्म बड़े हो जाएंगे कि उनके कान की लौ से कंधे तक 700 साल की मुसाफत होगी, और उनकी खाल की जो मोटाई होगी ना, कितनी थिक होगी ये स्किन, 70 जरा 70 हाथ मोटी होगी ये स्किन, और उनके दांत, एक दांत ओहद पहाड़ के बराबर होगा, यानी इंसान बड़ा होगा तो अजाब भी तो ज्यादा बॉडी के ऊपर होगा ना, अल्लाह ताला माफ करे। और ये क्या सिर्फ उनके लिए है जो कुफर करते हैं अल्लाह की आयात का, उनके लिए तो है ही है, जो भी जहन्नुम में जाएगा उसका यही अजाब है, जहन्नुम की आग जलाती ही ऐसे है, उसका काम ही ऐसे है जला देना। इस तकलीफ की शिद्दत को कोई इंसान कैसे सोचने के ऊपर भी ना, सोच पे भी इंसान सोचता भी है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो इसको बर्दाश्त करना कैसा होगा? अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी, कभी दुनिया की आग के करीबी हाथ ले जाके देखें कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है। और ये सिर्फ एक हाथ है, जहां पूरी स्किन जली हो वहां पे कैसा हो। इसके बाद इंसान को फिर अपनी जिंदगी पे नजरसानी करनी चाहिए कि जिन जिन गुनाहों के ऊपर कहा गया उनके लिए दर्दनाक अजाब, उनके लिए बड़ा अजाब, वो आग में होंगे। हम उन गुनाहों को छोड़ें, क्योंकि कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। और ये कुरान की हक्कानियत के ऊपर एक बहुत बड़ी सबूत है कि देखो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो साइंस का नहीं पता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं पता था कि ये स्किन के ऊपर ही जलन महसूस होती है। कैसे उन्होंने फिर इस कलाम को पढ़ा, हमें बताया, तो ये अल्लाह ही का कलाम हो सकता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नहीं है। तीसरी बात ये है कि देखें, कुराने पाक की एक आयत का इनकार भी ना सारे कुरान का इनकार है। यहाँ पे कहा गया जिन्होंने इनकार किया अल्लाह की आयात का, तो जो अल्लाह की आयात का, ये नहीं कि पूरी बुक का इनकार कर दिया, पूरे कलाम का इनकार कर दिया, कफरू भी आयाती ना, हमारी आयात का एक आयत को भी नहीं माना ना, सारी आयात का इनकार है। क्यों, कैसे? इसलिए कि वो एक आयत भी अल्लाह ही की तरफ से है। एक आयत, अल्लाह की बात को नहीं मानना ना, तो उसकी एक बात ना मानना सबका रद्द है।